नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार वनों के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने में देश भर में दूसरे स्थान पर, 107 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों की हुई बढ़ोतरी। वस्तु और सेवा कर परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की। खगड़िया में 15.5 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की जाएगी स्थापना। और मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 27 दिसंबर से राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। वनों के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच वन क्षेत्र को लेकर जारी आंकड़ों में वन क्षेत्र के बाहर बिहार में 107 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात वनों के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने में शीर्ष पर है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वन क्षेत्र के बाहर की हरित पट्टी बढ़ोतरी में घने वन की मात्रा अधिक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। इसमें उपग्रह डेटा और फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर देश के वन क्षेत्र और पौध क्षेत्र का व्यापक आकलन प्रस्तुत किया जाता है। ताजा अनुमान के अनुसार भारत का कुल वन और पौध क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25% से अधिक है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर को घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। इससे पहले से पैकेट बंद तथा लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक में जीएसटी और कर दरों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं पर कर की दरें कम करने या छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जीन थेरेपी को जीएसटी से छूट दी गई है। साथ ही बैंकों और एनबीएफसी के दंड शुल्क, देर से भुगतान शुल्क पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के प्रशिक्षण भागीदारों को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है, लेकिन ये फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों ने एयर टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है, इसलिए इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्री समूह स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर कम करने पर आगे काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट नोट पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्डर किए गए भोजन के लिए डिलीवरी शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर को कम करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। मंत्रियों के समूह में आम सहमति न बनने के बाद परिषद ने बीमा मामलों पर चर्चा स्थगित कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सरकार के 100 दिवसीय सघन तपेदिक उन्मूलन अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री नड्डा ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मुख्यमंत्रियों से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने अभियान को कारगर बनाने के लिए विधायकों के सहयोग का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में ई दस्तावेज को लेकर बदलाव किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि यह बदलाव दुरुपयोग रोकने के लिए किया गया है। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फुटेज सहित सभी दस्तावेज उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। अन्य लोगों को न्यायालय के आदेश से ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिलेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के बगहा से शुरू होगी। इस यात्रा में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल रहेंगे। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री सहित कई जदयू नेता इस यात्रा में भाग लेंगे। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू प्रदेश में साइबर अपराधियों की 339 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करेगी। ईओयू ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत अब तक 51,91,00,000 रुपए मूल्य की अपराध जनित संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। ईओयू ने इसके तहत आय से अधिक संपत्ति मामले में लोक सेवकों के विरुद्ध 85 मामले दर्ज किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 117वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव साझा किए जा सकते हैं। लोग 27 दिसंबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि जिले में अगले वर्ष 15.5 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले की लगभग 70% आबादी की आर्थिक स्थिति कृषि और पशुपालन पर आधारित है। अब डेयरी की स्थापना होने से इसका सीधा लाभ पशुपालकों को मिलेगा।
मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगे ताकि स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा और हमारे खगड़िया के दूध से खगड़िया में ही मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोडक्ट भी बनेंगे। इसके लिए प्रयास लगातार जारी था, जिलाधिकारी से पत्राचार भी किया गया था और अंतोगत हुआ। लगभग 15.5 करोड़ की लागत से खगड़िया में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपया जो है वो नीति आयोग से और शेष राशि बरौनी मिल्क यूनियन की मदद से खगड़िया में हमारा अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा।
सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत और मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर सिंहेश्वर स्थित बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर को धार्मिक कॉरिडोर से जोड़ने का आग्रह किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबा सिंहेश्वर धाम को धार्मिक कॉरिडोर से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 27 दिसंबर को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इसके कारण कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद सहित कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर का पूसा 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं गोपालगंज में सबसे अधिक तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रदेश में सक्षमता पास शिक्षकों को सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी ही नियुक्ति पत्र देंगे। विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर की लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि लिंक उपलब्ध होने के बाद कल से नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। वहीं सक्षमता परीक्षा पास विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से शुरू होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 2 किलो मॉर्फिन जब्त किया है। जब्त मॉर्फिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मॉर्फिन की ये खेप म्यांमार से लाई जा रही थी। मुंगेर के श्रीकृष्ण सेवा सदन पुस्तकालय सभागार में राष्ट्र प्रथम संविधान प्रथम विषय पर आचार्य कपिल व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर तैयार किया गया है। खगड़िया जिले के गंगगौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने चक्की पार दियारा से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में अवैध सामान जब्त किया है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव के पास अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर समेत दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना पुलिस ने भट्टाचार्य रोड के पास छापेमारी कर 200 फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बरामद की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 जालसाजों को भी गिरफ्तार किया है। पटना के दानापुर स्थित पेठिया बाजार में अपराधियों ने दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष समेत दो लोगों को गोली मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के शामहो थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर बरारी पंचायत में पुलिस ने पूर्व वार्ड सदस्य के घर से 18 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। कटिहार के सालमारी थाना क्षेत्र में एक चावल व्यवसायी से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने एक गिरोह से 7 अपराधियों को कई आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया है। सभी अपराधियों पर विभिन्न जिलों में लगभग 1 दर्जन से अधिक हत्या, डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। पूर्णिया में आयोजित 14वीं सब जूनियर महिला राज्य हॉकी चैंपियनशिप में आज पटना और पूर्णिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में पूर्णिया ने बक्सर और पटना ने सिवान को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया है। इधर सहरसा में खेले जा रहे 70वीं बिहार राज्य स्तरीय अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बालक अंडर 11 का खिताब मधेपुरा के नमन गुप्ता ने जीता है। फाइनल मुकाबले में नमन ने पटना के विराट को 3-1 से पराजित किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेंगे मॉडल विद्यालय। दैनिक जागरण लिखता है, गजट जारी, बेतिया राज की जमीन पर अब राज्य सरकार का स्वामित्व। दैनिक भास्कर ने क्लैट परीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, देश के 26 लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आयोजित क्लैट का परिणाम बदलेगा। प्रभात खबर लिखता है, डायल 112 पर रोजाना 72,000 कॉल रिस्पांस टाइम अब 20 से घटाकर हुआ 15 मिनट। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण। आज अखबार की सुर्खी है, विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी से मिलेगा नया वेतनमान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार वनों के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने में देश भर में दूसरे स्थान पर, 107 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की हुई बढ़ोतरी। वस्तु और सेवा कर परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की। खगड़िया में 15.5 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की जाएगी स्थापना। और मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 27 दिसंबर से राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।